यहोवा ही अकेला सच्चा परमेश्वर है और वो पूरे जहान का मालिक है, मगर कुछ दुष्ट स्वर्गदूतों और इंसानों ने खुद को ईश्वर बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। कुछ ईश्वर तो सिर्फ इंसानों की दिमागी उपज है। जो लोग इन झूठे ईश्वरों पर भरोसा रखते हैं, उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। झूठे देवता अपने भक्तों को ना तो आशीष दे सकते हैं, ना उनकी हिफाजत कर सकते हैं। भजन 96:5 बताता है कि देश देश के सब देवता निकम्मे हैं, मगर सच्चा परमेश्वर यहोवा उनसे कितना अलग है। वो अपने वफादार उपासकों की परवाह करता है और उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। प्राचीन समय में यहोवा के कुछ लोग ये सोचने लगे थे कि वे झूठे ईश्वरों की पूजा करने के साथ साथ यहोवा को भी खुश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एलिया के दिनों में राजा अहाब ने इजबेल से शादी की और बाल देवता की पूजा करने लगा। बहुत से इसराइली उसकी लीक पर चलने लगे। वे एक तरफ यहोवा की उपासना करते थे, वहीं दूसरी तरफ झूठे देवता बाल की पूजा में लगे हुए थे। अब जो ड्रामा हम सुनने जा रहे हैं, वो हमें भविष्यवक्ता एलिया के दिनों में ले जाएगा, ईसा पूर्व 10वीं सदी में। हम देखेंगे कि कैसे उस वक्त यहोवा ने साबित किया कि सिर्फ वही सच्चा परमेश्वर है। हम ये भी गौर करेंगे कि आज हम झूठे ईश्वरों पर भरोसा रखने से कैसे दूर रह सकते हैं। एलिया के दिनों में हुई घटनाओं को सुनते वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहला, यहोवा को छोड़ किसी और की भक्ति करना क्यों मूर्खता है? दूसरा, क्या बात हमें यहोवा को पूरी पूरी भक्ति देने से रोक सकती है? तीसरा, यहोवा हमारे लिए ऐसा क्या करता है जिससे हम उसके और करीब आ जाते हैं? ड्रामा सुनते वक्त अपने मन में अलग अलग किरदारों की तस्वीर खींचने की कोशिश कीजिए, जैसे कायर और पाखंडी राजा अहाब की, दुष्ट और रौब जमाने वाली रानी इजबेल की, नम्र और वफादार भविष्यवक्ता एलिया की। कल्पना कीजिए कि इसराइल देश में सूखा पड़ा है और वहां की वादियां, तंग घाटियां और पहाड़ियां झुलस चुकी हैं। हालांकि ड्रामा में आप जो अलग अलग आवाजें और लोगों की बातचीत सुनेंगे, वे हजारों साल पहले की हैं। मगर याद रखिए कि लोगों के बीच हुई ये बातचीत मनगढ़ंत नहीं, ये सचमुच में हुई थी। सबसे पहले हम पहला राजा, उसका 16 अध्याय, आयत 29-33 में दिया ब्यौरा सुनेंगे। ड्रामे की शुरुआत में दुष्ट राजा अहाब के बारे में बताया गया है। आइए देखें कि जब ये ड्रामा चलाया जाएगा तो किस तरह घटनाएं और भी जीती जागती बन जाएंगी। तो चलिए सुनते हैं ये ऑडियो ड्रामा जिसका शीर्षक है, यहोवा ही अकेला सच्चा परमेश्वर है।
यहूदा में राजा आसा की हुकूमत का 38वां साल चल रहा था। उसी साल अहाब, जो ओमरी का बेटा था, इसराइल का राजा बना। उसने सामरिया से 22 साल तक राज किया। वो यहोवा की नज़र में उन सभी लोगों से बदतर निकला जो उससे पहले हुए थे। उसने भी वही पाप किए जो नबात के बेटे यारोबाम ने किए थे। और मानो ये काफ़ी नहीं था, उसने सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इसेबेल से भी शादी कर ली और वो बाल देवता की उपासना करने और उसके आगे दंडवत करने लगा। यही नहीं, उसने सामरिया में बाल देवता के लिए जो भवन बनाया था, उसमें उसके लिए एक वेदी भी खड़ी की। अहाब ने अशेरा की एक मूरत भी बनवाई। इसराइल में अहाब से पहले जितने भी राजा हुए, उसने उन सबसे बढ़कर पाप किए और इसराइल के परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़काया।
हमने शुरू में जो 3 सवाल पूछे थे, क्या आपको उनके जवाब मिले? पहला सवाल था, यहोवा को छोड़ किसी और की भक्ति करना क्यों मूर्खता है? अहाब से पहले जितने भी राजा हुए, सबने यहोवा का क्रोध भड़काया और उन्हें भयानक अंजाम भुगतने पड़े। इससे सबक सीखने के बजाय, जैसे पहला राजा 16:33 बताता है, अहाब ने उन सब राजाओं से बढ़कर पाप किए और इसराइल के परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़काया। आहाब का ये सोचना मूर्खता थी कि वो यहोवा और बाल दोनों की उपासना कर सकता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:21 कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहोवा के प्याले से पियो और दुष्ट स्वर्गदूतों के प्याले से भी पियो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहोवा की मेज से खाओ और दुष्ट स्वर्गदूतों की मेज से भी खाओ। आहाब को इसका बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। उसने यहोवा की मंजूरी खो दी। दूसरा सवाल, क्या बात हमें यहोवा को पूरी पूरी भक्ति देने से रोक सकती है? आज शायद ही यहोवा का कोई समर्पित सेवक जानबूझकर झूठे देवी देवताओं को पूजे, लेकिन हो सकता है वो अनजाने में यहोवा को पूरी पूरी भक्ति ना दे। आहाब की पत्नी यहोवा की उपासक नहीं थी और उसकी बातों में आकर आहाब झूठी उपासना करने लगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन यहोवा पर पूरी तरह लगा रहे, तो जरूरी है कि हम उन लोगों से दूर रहें जो सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं करते और जो हम पर बुरा असर डाल सकते हैं। तीसरा सवाल, यहोवा हमारे लिए ऐसा क्या करता है जिससे हम उसके और करीब आ जाते हैं? पहला राजा 16:30 यहोवा की आंखों का जिक्र करता है। झूठे देवी देवताओं के उलट यहोवा हमारे हर काम को देख सकता है। पहला राजा 16:33 बताता है कि आहाब ने अपने कामों से यहोवा का क्रोध भड़काया। यहोवा सचमुच वजूद में है और वो हमें याद दिलाता है कि उसे धरती पर अपने सेवकों की परवाह है। हम अपने कामों से या तो उसका दिल दुखा सकते हैं या उसे खुश कर सकते हैं, और ये जानकर हमें कितनी तसल्ली मिलती है कि यहोवा के लिए हम जो प्यार और वफादारी दिखाते हैं वो उसे कभी अनदेखा नहीं करता। ड्रामा का अगला भाग पहला राजा 17:1-7 से लिया गया है, जहां यहोवा के वफादार भविष्यवक्ता एलिया का जिक्र पहली बार आता है।
गिलाद के तिशबे के रहने वाले एलिया ने आहाब से कहा,
इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, जब तक मैं ना कहूं तब तक इस देश में न तो ओस पड़ेगी न पानी बरसेगा।
तब यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा,
ये जगह छोड़कर पूरब की तरफ जा और जाकर करीत घाटी में छिप जा, जो यर्दन के पूरब में है। तू वहां की नदी का पानी पीना और मैं कौआ को हुक्म दूंगा कि वो तेरे पास खाना पहुंचाए।
एलिया ने फौरन यहोवा की बात मानी। वो यर्दन के पूरब में करीत घाटी में जाकर रहने लगा। कौए सुबह शाम उसके लिए रोटी और मांस लाते थे और वो नदी का पानी पीता था, मगर कुछ दिनों बाद नदी सूख गई क्योंकि देश भर में बारिश नहीं हुई।
क्या आपको पहला राजा 17:1-7 की पढ़ाई से उन तीन सवालों के जवाब मिले? याद है हमारा पहला सवाल था, यहोवा को छोड़ किसी और की भक्ति करना क्यों मूर्खता है? आहाब के धर्म त्याग की वजह से यहोवा ने पूरे देश को अकाल से पीड़ित किया।
लूका 4:25 बताता है
कि 3.5 साल तक सूखा पड़ा। कनानियों का बाल देवता, जिसे बारिश लाने वाला और अच्छी फसल देने वाला समझा जाता था, वो लोगों को इस मुसीबत से नहीं बचा पाया क्योंकि वो एक झूठा ईश्वर था। दूसरा सवाल, क्या बात हमें यहोवा को पूरी पूरी भक्ति देने से रोक सकती है? लैंगिक इच्छाएं, ऐशो आराम की चीजें, दुनिया में अच्छा करियर, ऊंची शिक्षा, टेक्नोलॉजी, पालतू जानवर, मनोरंजन और खाना पीना, ये ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में वो जगह ले सकती हैं जो एक वक्त पर हम यहोवा को दिया करते थे। इन चीजों पर भरोसा रखना आफत मोल लेना है और यहोवा के साथ अपनी दोस्ती तोड़ना है। इसलिए जरूरी है कि हम लूका 21 अध्याय आयत 34 से 36 में दी यीशु की बात को माने। आयत 34 में यीशु ने कहा, मगर खुद पर ध्यान दो कि हद से ज्यादा खाने और पीने से और जिंदगी की चिंताओं के भारी बोझ से कहीं तुम्हारे दिल दब न जाएं
और वो दिन तुम पर पलक झपकते ही अचानक फंदे की तरह ना आ पड़े, इसलिए कि वो दिन धरती पर रहने वाले सभी लोगों पर आ पड़ेगा।
इसलिए आंखों में नींद ना आने दो और हर घड़ी प्रार्थना और मिन्नत करते रहो, ताकि जिन बातों का होना तय है उन सबसे बचने और इंसान के बेटे के सामने खड़े रहने में तुम कामयाब हो सको। तीसरा सवाल, यहोवा हमारे लिए ऐसा क्या करता है जिससे हम उसके और करीब आ जाते हैं? इसराइल में अकाल लाकर यहोवा ने दिखाया कि कुदरती शक्तियां उसके काबू में हैं। कौओं के जरिए एलिया तक खाना पहुंचाकर यहोवा ने यह भी दिखाया कि धरती के सारे जीव उसके अधीन हैं। मगर झूठे ईश्वरों में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। आज यहोवा अपनी ताकत का सबूत कैसे दे रहा है? उसके दुश्मन शुद्ध उपासना को मिटाने की लाख कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें कामयाब नहीं होने देता। इस तरह वो यशाया 54 अध्याय आयत 17 में दिया अपना वादा पूरा करता है।
यशाया 54 का 17 कहता है,
जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है।
जी हाँ, यहोवा हम में से हर एक की मदद करता है कि हम जिंदगी की चिंताओं का सामना कर सकें।
ड्रामा का अगला भाग पहला राजा 18 अध्याय आयत 17 से 46 से लिया गया है। 3.5 साल से देश सूखे की चपेट में है। यहोवा की तरफ से पूरे इसराइल देश में भयंकर अकाल पड़ा है। इसके बाद भी आहाब और कई इसराइली बाज नहीं आए। वे बाल देवता की उपासना में लगे रहे, साथ ही सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना करने का ढोंग करते रहे। आहाब बहुत समय से एलिया को ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि एलिया की वजह से ही देश में सूखा पड़ा है। आइए सुने कि आखिरकार जब आहाब एलिया से मिलता है तो क्या होता है।
एलिया को देखते ही आहाब ने कहा,
लो ये रहा इसराइल पर बड़ी मुसीबत लाने वाला।
इस पर एलिया ने कहा,
इसराइल पर मुसीबत लाने वाला मैं नहीं, तू और तेरे पिता का घराना है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं पर चलना छोड़ दिया और बाल देवताओं को मानने लगे। अब सारे इसराइलियों से कहे कि वो कर्मेल पहाड़ पर मेरे पास इकट्ठा हों। बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबियों को भी बुला जो इजेबेल की मेज से खाते हैं।
तब अहाब ने सारे इसराइलियों और नबियों को कर्मेल पहाड़ पर इकट्ठा किया और एलिया ने लोगों के पास जाकर कहा,
तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, लेकिन अगर बाल सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो।
लोगों के मुंह से एक शब्द ना निकला। तब एलिया ने उनसे कहा,
यहोवा के नबियों में से सिर्फ मैं बच गया हूं, जबकि बाल के 450 नबी हैं। अब दो बैल लाए जाएं, एक उनको दिया जाए और एक मुझे। वे उसे काटकर लकड़ियों पर रख दें, मगर उस पर आग ना लगाएं। दूसरे बैल को मैं काटकर लकड़ियों पर रखूंगा, मगर उस पर आग नहीं लगाऊंगा। फिर तुम अपने देवता को बुलाना और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को बुलाऊंगा। जवाब में जो आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा।
इस पर उन्होंने जवाब दिया,
हाँ हमें मंजूर है।
एलिया ने बाल के नबियों से कहा,
तुम गिनती में ज्यादा हो, इसलिए पहले तुम एक बैल लो और उसे बलि के लिए तैयार करो, फिर अपने देवता का नाम लेकर उसे बुलाओ, मगर लकड़ियों में आग मत लगाना।
तब उन्होंने अपना बैल बलि के लिए तैयार किया और बाल का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। सुबह से लेकर दोपहर तक वे चिल्लाते रहे,
हे बाल,
हे बाल,
हमारी सुन,
हे बाल, हमारी सुन।
मगर ना तो कोई आवाज आई ना कोई जवाब मिला। वे वेदी के चारों तरफ उछलने कूदने लगे। जब दोपहर होने लगी तब एलिया उनका मजाक उड़ाने लगा,
और जोर से पुकारो, वो तो देवता है, शायद किसी गहरी सोच में डूबा हो या खुद को हल्का करने गया हो, ये शायद वो सो रहा है और उसे जगाने की जरूरत है।
जगाने की?
वे जोर जोर से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक खुद को खंजरों और बर्छियों से इस कदर काटने लगे कि लहू लुहान हो गए। दोपहर बीत गई, शाम की अन्न बलि चढ़ाने का वक्त आ गया। नबी पागलों की तरह चिल्लाते रहे मगर ना तो कोई आवाज आई ना कोई जवाब मिला। उन पर ध्यान देने वाला कोई न था। काफी इंतजार के बाद एलिया ने लोगों से कहा,
मेरे पास आओ।
सब लोग उसके पास आए। तब उसने यहोवा की उस वेदी को दोबारा खड़ा किया जिसे गिरा दिया गया था। उसने याकूब के बेटों के गोत्रों के मुताबिक 12 पत्थर लिए, वही याकूब जिससे यहोवा ने कहा था कि तेरा नाम इसराइल होगा। उन पत्थरों से उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, फिर उसके चारों ओर एक गड्ढा खोदा, इतना बड़ा गड्ढा कि उसमें करीब 10 किलो बीज बोया जा सके। तब उसने वेदी पे लकड़ियां सजाई, बैल के टुकड़े किए और वेदी पर रख दिए। फिर उसने कहा,
4 बड़े बड़े घड़ों में पानी भर कर ले आओ और होमबली और लकड़ियों पर उंडेल दो।
एलिया ने कहा,
दोबारा ऐसा करो।
उन्होंने वैसा ही किया। उसने तीसरी बार फिर कहा,
एक बार और ऐसा करो।
उन्होंने तीसरी बार भी वैसा ही किया और पानी वेदी के चारों ओर बह गया। एलिया ने गड्ढे को भी पानी से भर दिया। फिर शाम की अन्न बलि चढ़ाने के समय उसने आगे आकर कहा,
हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज सबको बता दे कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूं और मैंने ये सारे काम तेरे हुक्म पे किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, मुझे जवाब दे ताकि ये लोग जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर यहोवा है और तू ही उनका मन अपनी ओर फेर रहा है।
तब आसमान से यहोवा की आग गिरी और उसने होमबलि, लकड़ी, पत्थर और धूल सब कुछ भस्म कर दिया। आग ने गड्ढे का पानी तक सुखा दिया। ये देखकर लोग फौरन मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे,
यहोवा सच्चा परमेश्वर है,
यहोवा,
यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है,
यहोवा।
तब एलिया ने लोगों से कहा,
बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी भागने न पाए।
लोगों ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन नदी में ले जाकर मार डाला। अब एलिया ने अहाब से कहा,
जा कुछ खा पी ले, क्योंकि मुझे अभी से मूसलाधार बारिश की आवाज सुनाई दे रही है।
अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल पहाड़ पर चढ़ गया। वो जमीन पर झुक गया और अपना मुंह घुटनों के बीच रखकर वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने सेवक से कहा,
ऊपर जा और समुन्दर की तरफ देख।
सेवक ने जाकर देखा और लौटकर कहा,
कुछ नजर नहीं आया।
एलिया ने 7 बार कहा,
वापस जाकर देख।
7वीं बार सेवक ने आकर कहा,
मालिक, मालिक, हथेली जितना छोटा बादल समुन्दर से ऊपर उठ रहा है।
एलिया ने अपने सेवक से कहा,
आहाब के पास जाकर कहे, रथ तैयार कर और अपने घर के लिए निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बारिश में फंस जाए।
इस बीच आसमान में काली घटा छा गई, आंधी चलने लगी और झमाझम बारिश होने लगी। अहाब अपना रथ इजरेल की तरफ दौड़ाता गया। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर काम करने लगी। उसने अपना कपड़ा कमर पर बांधा और दौड़ता हुआ अहाब से भी आगे निकल गया और इजरेल तक दौड़ता
गया। आइए देखें कि इस पढ़ाई से कैसे हमें उन शुरुआती सवालों के जवाब मिले हैं। पहला, यहोवा को छोड़ किसी और की भक्ति करना क्यों मूर्खता है? एलिया ने लोगों के सामने चुनाव रखा। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, लेकिन अगर बाल सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। इसके कुछ ही समय बाद यहोवा ने बड़े जबरदस्त तरीके से साबित किया कि बाल को ईश्वर मानना कितना व्यर्थ है। बाल का एक भी नबी सजाए मौत से नहीं बच पाया। जरूरत की घड़ी में वो अपने उपासकों की कोई मदद नहीं कर पाया। सच जीवन और सच्ची खुशी के देने वाले यहोवा को नाराज करना कितनी बड़ी मूर्खता है। दूसरा, क्या बात हमें यहोवा को पूरी पूरी भक्ति देने से रोक सकती है? जब यहोवा की आग ने बैल, पानी, लकड़ी और पत्थरों को भी भस्म कर दिया, तो ये देखकर इसराइली बार बार कहने लगे, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। इसराइली करीब 600 साल से यहोवा के लोग थे और अच्छे से जानते थे कि वो कितना शक्तिशाली है। उसे सच्चा परमेश्वर मानने के लिए उन्हें एक और चमत्कार देखने की जरूरत नहीं थी। असल में उनकी सोचने समझने की शक्ति मंद पड़ गई थी। वे उन अद्भुत कामों को भूल गए जो यहोवा ने उनके लिए किए थे। आइए हम ठान लें कि हम उन अद्भुत कामों को नहीं भूलेंगे जो यहोवा ने हम सब के लिए, हम में से हर एक के लिए किए हैं, और उन ढेरों सबूतों पर मनन करेंगे जो दिखाते हैं कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। आखिरी सवाल, यहोवा हमारे लिए ऐसा क्या करता है जिससे हम उसके और करीब आ जाते हैं? एलिया ने जब यहोवा से आग और बारिश के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की तो यहोवा ने उसकी सुनी। आज भी यहोवा प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, हम उसकी मर्जी के मुताबिक चाहे जो भी मांगें, वो हमारी सुनता है। यहोवा ने चमत्कार करके एलिया को इतनी ताकत दी कि वो 30 किलोमीटर तक दौड़ता गया और अहाब के रथ से भी आगे निकल गया। आज यहोवा की पवित्र शक्ति हमें वह ताकत देती है जो आम इंसानों की ताकत से कहीं बढ़कर है, ताकि हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकें। फिलिप्पियों 4:13 में प्रेषित पौलुस ने लिखा, जो मुझे ताकत देता है उसी से मुझे सब बातों के लिए शक्ति मिलती है। ड्रामा का अगला भाग पहला राजा 19:1-8 से लिया गया है। ये ब्यौरा दिखाएगा कि एलिया भी हमारी तरह आम इंसान था। उसमें भी हमारे जैसी भावनाएं थीं। जब दुष्ट रानी इजबेल ने उसे मार डालने की धमकी दी तो एलिया निराश हो गया, हिम्मत हार बैठा। आइए सुने कि कैसे यहोवा ने एलिया की मदद की और साबित किया कि वही सच्चा परमेश्वर है।
अहाब ने इजबेल को सारा हाल कह सुनाया कि एलिया ने क्या क्या किया और किस तरह उसने सारे नबियों को तलवार से मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा और कहा,
अगर कल इस वक्त तक मैंने तेरा वो हाल ना किया जो तूने मेरे नबियों का किया है, तो मेरे देवता मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें।
ये सुनकर एलिया डर गया और अपनी जान बचाकर भागा। यहूदा के इलाके में बेरशेबा पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और अकेला वीराने में निकल पड़ा। एक दिन का सफर तय करने के बाद
वो झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और परमेश्वर से मौत मांगने लगा।
हे यहोवा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरी हालत मेरे बाप दादों से भी बदतर हो गई है।
एलिया झाऊ के पेड़ नीचे लेट गया और सो गया। तभी अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा,
उठ और कुछ खा ले।
एलिया ने देखा उसके सिरहाने गरम गरम पत्थरों पर पकी हुई रोटी रखी है और पानी की एक सुराई भी है। उसने रोटी खाई और पानी पिया, फिर वो सो गया। यहोवा का स्वर्गदूत दोबारा आया और उसने एलिया को छूकर कहा,
उठकर कुछ खा ले, वरना आगे का सफर करने के लिए तुझ में ताकत नहीं होगी।
तब एलिया ने उठकर खाया पिया और उसे इतनी ताकत मिली कि वो 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा, जब तक वो सच्चे परमेश्वर के पहाड़ होरेब ना पहुंच गया।
एक बार फिर आपको हमारे उन तीन सवालों के सही सही जवाब मिले होंगे। पहला, यहोवा को छोड़ किसी और की भक्ति करना क्यों मूर्खता है? कर्मेल पहाड़ पर हुए चमत्कार के बाद भी अहाब और इजबेल ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। अपनी भ्रष्ट दिमागी हालत की वजह से उन्होंने शर्म हया की सारी हदें पार कर दी। ये दिखाता है कि आधे अधूरे मन से यहोवा की सेवा करना और बार बार उसकी आज्ञा तोड़ना हमें कठोर बना सकता है और उससे दूर ले जा सकता है। दूसरा, क्या बात हमें यहोवा को पूरी पूरी भक्ति देने से रोक सकती है? एलिया भी हमारे जैसी भावनाएं रखने वाला इंसान था। एक वक्त पर वो भी निराश हो गया और हिम्मत हार बैठा। कई बार हमें भी ऐसी भावनाएं आ घेरती हैं, लेकिन ये भावनाएं हम पर इतनी हावी ना हो कि हम यहोवा की सेवा में ढीले पड़ जाएं। तीसरा, यहोवा हमारे लिए ऐसा क्या करता है जिससे हम उसके और करीब आ जाते हैं? यहोवा के सरदूत ने एलिया को खाना दिया, उसके मन को मजबूत किया और परमेश्वर की सेवा में लगे रहने का हौसला दिया। हम भी इंसान हैं, इसलिए कई बार हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। तब यहोवा हमारा हौसला कैसे बढ़ाता है? वह हमारा हौसला बढ़ाता है अपने वचन, अपनी पवित्र शक्ति और मसीह मंडली के जरिए। हम यहोवा पर भरोसा रख सकते हैं कि वो निराशा की गहरी खाई से हमें निकाल सकता है। बाइबल में दिया एलिया का किस्सा हमें कई अनमोल सबक सिखाता है। एक ये कि यहोवा ही अकेला सच्चा परमेश्वर है, जिस बात को बाल के नबियों ने देर से समझा, और सच्चा परमेश्वर होने के नाते सिर्फ वही हमारी उपासना का हकदार है और हमसे इसकी उम्मीद भी करता है। कोई भी बात हमारी जिंदगी में यहोवा की उपासना से पहले ना आए। हम ये भी सीखते हैं कि यहोवा हमें आशीष देने और हमारी हिफाजत करने की ताकत और इच्छा दोनों रखता है। सच्चा परमेश्वर होने के नाते वो उनके साथ वफादारी निभाता है जो उसके वफादार रहते हैं। इसलिए आइए हम में से हर एक अपने पिता यहोवा के लिए दिल से वफादारी दिखाता रहे, जो अकेला सच्चा परमेश्वर है।